आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम दीक्षा है। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास टेंथ की बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर 3, द मिडनाइट विजिटर बाय रॉबर्ट आर्थर। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं जल्दी से आपको इस चैप्टर की समरी दे देती हूँ और उसके बाद हम चैप्टर को लाइन टू लाइन रीड करना शुरू करेंगे। इस स्टोरी में ऑसबेल नाम का एक जासूस था, लेकिन वो बिल्कुल भी जासूस की तरह नहीं दिखता था। फॉलर एक यंग और रोमांटिक राइटर था। ऑसबेल को देख के उसे बड़ी निराशा हुई। ऑसबेल ने फॉलर को बताया कि वो यहाँ पर एक रिपोर्ट को लेने आया है और उस रिपोर्ट पर कई लोगों की जिंदगी निर्भर करती है और ये रिपोर्ट हिस्ट्री को चेंज कर देगा। ऑसबेल ने दरवाजा खोला और उसने कमरे की लाइट जलाई तो उसने देखा कि वहां पर एक आदमी खड़ा है और उसके हाथ में एक छोटी सी पिस्तौल भी है। वह आदमी मैक्स था और वो भी ऑसबेल की तरह ही एक जासूस था। मैक्स लोमड़ी की तरह चालाक दिखाई देता था और उसने ऑसबेल को बताया कि वो मिसाइल्स के बारे में कुछ रिपोर्ट लेने के लिए वहां पर आया है। ऑसबेल ने कहा कि उसने होटल की मैनेजिंग कमेटी को शिकायत कर दी है। ऑसबेल ने कहा कि ये दूसरी बार है कि कोई इंसान बिना किसी इजाजत के मेरे कमरे में बालकनी से घुस आया है, लेकिन मैक्स ने बताया कि वो बालकनी से कमरे में नहीं आया था, उसके पास तो एक नकली चाबी थी। उसी समय दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनाई दी। अचानक दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनकर फॉलर उछल पड़ा। ऑसबेल मुस्कुराया। उसने बताया कि शायद पुलिस दरवाजे पर आई है। उसने पुलिस को इस रिपोर्ट के बारे में बता दिया था और इसे स्पेशल सुरक्षा की भी जरूरत है। मैक्स घबरा गया। मैक्स के चेहरे पर गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा था। रात के अंधेरे में उसने अपने पाँव बाहर रखे। वह खिड़की से बचकर निकल जाना चाहता था। उसने ऑसबेल से पुलिस को वापस भेजने के लिए कहा, लेकिन अब दरवाजे पर खटखटाने की आवाजें तेज हो रही थी। दरवाजे की कुंडी हिली। मैक्स ने अपने आप को लिबरेट कर लिया और वो बालकनी से कूद गया। एक बार वो बहुत जोर से चीखा। इतने में कमरे का दरवाजा खुला और वहां पर एक वेटर ट्रे, एक बोतल और दो ग्लास लेकर खड़ा था। ये देखकर फॉलर हैरान हो गया और उसने ऑसबेल से पुलिस के बारे में पूछा। ऑसबेल ने उसे बताया कि वहां तो कोई पुलिस थी ही नहीं। फॉलर ने फिर मैक्स के बारे में पूछा तो ऑसबेल ने उसे कहा कि अब मैक्स कभी भी वापस नहीं आएगा। यानी स्टूडेंट्स, मैक्स बालकनी से गिरकर मर गया है। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम स्टोरी को पढ़ना शुरू करते हैं। आप सभी पेज नंबर 14 पर आइए। चैप्टर 3, द मिडनाइट विजिटर। ऑसबेल, अ सीक्रेट एजेंट, is expecting to get a very important report. Another secret agent, Max, threatens him with a pistol, demanding the report. Does Ausbell outwit him? Students, यहाँ पर कहा गया है कि Ausbell एक secret agent है और वो एक important report को expect कर रहा था कि उसे वो report मिलने वाली है। और एक और सीक्रेट एजेंट है, यानी एक और जासूस है जिसका नाम है मैक्स। उसने ऑसबेल को पिस्टल दिखाकर धमकाने की कोशिश की ताकि वो रिपोर्ट ले सके। अब हम इस स्टोरी में जानेंगे कि क्या ऑसबेल ने अपनी सूझबूझ से मैक्स के ऊपर विजय हासिल कर ली। रीड एंड फाइंड आउट, पढ़िए और पता लगाइए। फर्स्ट, हाउ इज ऑसबेल different from other secret agents? Ausbell दूसरे जासूसों से कैसे अलग था? Second, who is Fowler? And What is his first authentic thrill of the day? Fowler कौन था और उसका पहला authentic thrill क्या था दिन का? चलिए students, अब हम chapter को पढ़ना शुरू करते हैं. Osbell did not fit any description of a secret agent Fowler had ever read. Following him down the musty corridor of the gloomy French hotel where Osbell had a room, Fowler felt let down. It was a small room on the sixth and top floor and scarcely a setting for a romantic adventure. Osbell किसी जासूस से मेल नहीं खाता था जिसके बारे में फॉलर ने पढ़ रखा हो. फ्रांसीसी अंधियारे होटल के बदबूदार गलियारों में उसका पीछा करते हुए जहां ऑसबेल का एक कमरा था, फॉलर को निराशा होने लगी थी. सबसे ऊपर छठी मंजिल पर यह छोटा सा कमरा था और किसी कल्पनाशील व्यक्ति के लिए जो इतना रोमांटिक राइटर हो उसके लिए ये कोई अच्छी जगह नहीं थी. ऑसबेल वाज फॉर वन थिंग फैट, वेरी फैट, एंड देन देयर वाज हिज एक्सेंट, दो ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन पैसेबली, ही हैड नेवर ऑल टुगेदर लॉस्ट द अमेरिकन एक्सेंट. ही हैड ब्रॉट टू पेरिस फ्रॉम बोस्टन 20 years ago. ऑसबेल की एक विशेषता थी कि वह मोटा था, बहुत मोटा. फिर भी उसके बोलने के तरीके के लिए उसे जाना जाता था. वैसे वह ठीक ठाक फ्रेंच और जर्मन बोल लेता था. उसने अपना अमेरिका का लहजा पूरी तरह कभी नहीं खोया था जिसे वह 20 साल पहले बोस्टन से पेरिस लेकर आया था. यू आर डिसअपॉइंटेड, ऑसबेल सेड वीजीली ओवर हिज शोल्डर. यू वर टोल्ड दैट आई वॉज अ सीक्रेट एजेंट, अ स्पाई डीलिंग इन एस्पियोनेज एंड डेंजर. यू विश टू मीट मी बिकॉज यू आर अ राइटर यंग एंड रोमांटिक. यू एनविजन्ड mysterious figures in the night, the crack of pistols, drugs in wine. ऑसबेल ने कहा कि आप निराश हैं. आपको बतलाया गया था कि मैं एक जासूस हूँ, एक जासूस जो षड्यंत्र और खतरों से जूझता है. आप मुझसे मिलना चाहते थे क्योंकि आप एक लेखक हैं जो युवा और कल्पनाशील हैं, यानी आप बहुत सारे नई नई बातें सोचते रहते हो. आप रात को रहस्यमय आकृतियों की, पिस्तौल चलने की और शराब में नशे की दवाइयां मिले होने की कल्पना करते हो. Instead, you have spent a dull evening in a French music hall with a sloppy fat man who instead of having messages slipped into his hand by dark-eyed beauties, gets only a prosaic telephone call, making an appointment in his room. You have been bored. The fat man chuckled to himself as he unlocked the door of his room and stood aside to let his frustrated guest enter. Phir ऑसबेल ने कहा कि ये सब करने की बजाय आपने एक उबाऊ शाम फ्रेंच म्यूजिक हॉल में एक ऐसे लापरवाह मोटे से आदमी के साथ गुजार दी जिसे गहरी आंखों वाली सुंदरियों के द्वारा, यानी गहरी आंखों वाली सुंदर लड़कियों के द्वारा उसे हाथ में चुपके से संदेश देने की बजाय मात्र एक साधारण सा टेलीफोन संदेश मिलता है. स्टूडेंट्स, यहाँ पर ऑसबेल ये कहने की कोशिश कर रहा है कि क्योंकि फॉलर एक बहुत ही रोमांटिक लेखक है तो वो हमेशा यही सोचता होगा कि सुंदर सुंदर लड़कियां आएंगी और म्यूजिक हॉल में ऑसबेल जो कि एक जासूस है उसे कोई ना कोई राज की बात बता जाएंगी, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। फिर ऑसबेल ने फॉलर से कहा, आपको मैंने बहुत बोर किया है, और ये कहकर वो हंसने लगा। और जब उसने अपने कमरे के दरवाजे का ताला खोला और एक तरफ खड़ा हुआ ताकि उसका वो निराश मेहमान अंदर आ सके, यू आर डिसइल्यूजन्ड, ऑसबेल टोल्ड हिम, बट टेक चीयर माय यंग फ्रेंड, प्रेजेंटली यू विल सी अ पेपर, अ क्वाइट इंपॉर्टेंट पेपर फॉर। चलिए स्टूडेंट्स, पेज नंबर 15 पर आइए। सेवरल मेन एंड वेमेन हैव रिस्क देयर लाइव्स, कम टू मी, समडे सून दैट पेपर मे वेल अफेक्ट द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, इन दैट थॉट इज ड्रामा, इज देयर नॉट। अब ऑसबेल ने कहा कि आप भ्रमित हैं, लेकिन मेरे जवान दोस्त खुश हो जाओ, अभी आपको मेरे पास जो कागज दिखेगा वो इतना इम्पोर्टेंट है कि कई आदमी और औरतों ने इसके लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी है। किसी दिन शायद यही कागज जल्द ही इतिहास को भी बदल देगा, या हिस्ट्री पर भी इस कागज का इफेक्ट होगा। इस सोच में नाटक नहीं है क्या? As he spoke, Ausbill closed the door behind him. Then he switched on the light. जैसे वो बोल रहा था, वैसे ही ऑसबेल ने उसके पीछे दरवाजा बंद कर दिया और फिर उसने बत्ती जलाई। And as the light came on, Fowler had his first authentic thrill of the day. For halfway across the room, a small automatic pistol in his hand stood a man. और जैसे ही रोशनी हुई, फॉलर ने दिन भर के पहले सच्चे रोमांच का अनुभव किया, क्योंकि कमरे के बीचों बीच एक ऑटोमेटिक पिस्टल लेकर एक आदमी खड़ा था। ऑसबेल ब्लिंक्ड अ फ्यू टाइम्स, ऑसबेल ने कई बार अपनी पलके झपकाई। मैक्स, ही वीज, यू गेव मी क्वाइट अ स्टार्ट, आई थॉट यू वर इन बर्लिन, व्हाट आर यू डूइंग हियर इन माय रूम, ऑसबेल ने खांसते हुए कहा। मैक्स, आपने तो मुझे चौंका ही दिया, मैं तो ये सोचता था कि आप तो बर्लिन में हैं, लेकिन आप मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? स्टूडेंट्स, पेज नंबर 15 पर जो पिक्चर दी गई है उसमें आप देख सकते हैं कि जो ये थोड़ा फैट आदमी है ये है ऑसबेल, उसके पीछे लंबा आदमी है फॉलर, और सामने हाथ में बंदूक लिए है मैक्स। चलिए स्टूडेंट्स, अब स्टोरी पर वापस आ जाइए। रीड एंड फाइंड आउट, पढ़िए और पता लगाइए। फर्स्ट, How has Max got in? Max कमरे के अंदर कैसे आया? Second, how does Ausbill say he got in? Ausbill ने क्या कहा कि वो कमरे में कैसे आया है? Max was slender, a little less than tall, with features that suggested slightly the craftily pointed countenance of a fox. There was about him, aside from the gun, nothing especially menacing. Max दुबला था, लंबा भी नहीं था, और चेहरा ऐसा था मानो लोमड़ी हो। हाथ में बंदूक के अलावा वह बहुत खतरनाक भी दिखाई नहीं देता था, क्योंकि अब उसके हाथ में बंदूक थी तो हाँ वो थोड़ा सा खतरनाक दिख रहा था, लेकिन शक्ल से वो डरावना बिल्कुल नहीं था। The report, he murmured. The report that is being brought to you tonight concerning some new missiles. I thought I would take it from you. It will be safer in my hands than in yours.
तो मैक्स ने कहा, रिपोर्ट कुछ नई मिसाइलों से संबंधित जो रिपोर्ट आज रात आपके पास लाई जा रही है, मैंने सोचा कि मैं उसे आपसे ले लूंगा। आपके बजाय मेरे हाथों में वो रिपोर्ट्स ज्यादा सेफ रहेंगी।
चलिए स्टूडेंट्स, अब पेज नंबर 16 पर आइए। ऑस्बेल मूव्ड टू एन आर्म चेयर एंड सैट डाउन हैवीली। आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम एंड यू कैन बेट ऑन इट, ही सेड ग्रिमली। दिस इज द सेकेंड टाइम इन अ मंथ that somebody has got into my room through that nuisance of a balcony. Fowler's eyes went to the single window of the room. It was an ordinary window against which now the night was pressing blackly.
Ausbell चलकर एक कुर्सी के पास गया और धम से बैठ गया। उसने बहुत ही सीरियस होकर कहा, इस बार मैं होटल मैनेजमेंट के साथ में झगड़ा करने वाला हूँ। मैं गुस्से में हूँ। एक महीने में ये दूसरी बार हुआ है कि मेरे कमरे में कोई बालकनी से घुस आया है। अब फॉलर की आंखें कमरे की एकमात्र खिड़की पर गई। ये बिल्कुल एक आम सी खिड़की थी जिसमें अब रात ढलती हुई दिखाई दे रही थी।
बालकनी, मैक्स सेड विद अ राइजिंग इन्फ्लेक्शन। नो, आप पास की। आई डिड नॉट नो अबाउट द बालकनी। इट माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल हैड आई नोन।
मैक्स ने कहा, बालकनी नहीं, मेरे पास एक सभी तालों पर लगने वाली चाबी थी। मुझे बालकनी के बारे में पता भी नहीं था। अगर मुझे इसके बारे में पता होता तो ये मेरी कुछ तकलीफ को बचा सकती थी।
इट्स नॉट माय बालकनी, ऑस्बेल सेड विद एक्सट्रीम इरिटेशन। इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट। ही ग्लैंस्ड एक्सप्लेनेटरली एट फॉलर। यू सी, ही सेड, this room used to be a part of a large unit and the next room through that door there used to be the living room. It had the balcony which extends under my window now. You can get onto it from the empty room two doors down. And somebody did last month. The management promised to block it off, but they haven't.
ऑस्बेल ने गुस्से में होकर समझाया कि ये मेरी बालकनी नहीं है, ये अगले अपार्टमेंट की है। उसने फॉलर की तरफ भी गहरी आंखों से देखा। उसने कहा, देखो, ये कमरा एक बड़े कमरे का हिस्सा हुआ करता था और अगला कमरा उस दरवाजे के जरिए रहने वाला कमरा हुआ करता था। इसमें वो बालकनी थी जो अब मेरी खिड़की के नीचे है। अगले वाले खाली कमरे के दरवाजे की हेल्प से आप इसमें आ सकते हैं और पिछले महीने किसी ने ऐसा ही किया था। मैनेजमेंट से इसे बंद कर देने की बात मैंने की थी और उन्होंने वादा भी किया था, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई भी स्टेप नहीं उठाया है।
मैक्स ग्लांस्ड एट फॉलर हु वाज स्टैंडिंग स्टिफली नॉट फार फ्रॉम ऑस्बेल एंड वेव्ड द गन विद अ कमांडिंग जेस्चर। प्लीज सिट डाउन, ही सेड, वी हैव अ वेट ऑफ हाफ एन आवर आई थिंक।
मैक्स ने फॉलर की तरफ नजर डाली जो ऑस्बेल से कुछ ही फीट दूर पर तना हुआ खड़ा था। और फिर उसे कमांड करते हुए उसकी तरफ बंदूक दिखाकर मैक्स ने कहा कि प्लीज बैठ जाओ, मुझे लगता है हमें आधा घंटा और इंतजार करना पड़ेगा।
31 minutes,
Oswell said moodily.
The appointment was for 12:30. I wish I knew how you learned about the report, Max.
इतने में Oswell ने कहा कि हमें 31 मिनट्स के लिए इंतजार करना पड़ेगा। मुलाकात का समय 12:30 का था। काश मुझे पता चल जाता कि मैक्स तुम्हें इस रिपोर्ट के बारे में पता कैसे चल गया। द लिटिल स्पाई स्माइल्ड इवनली
एंड वी विश वी न्यू हाउ योर पीपल गॉट द रिपोर्ट बट नो हार्म हैज बीन डन आई विल गेट इट बैक टुनाइट व्हाट इज दैट हु इज एट द डोर।
वो छोटा सा जासूस बड़ी ही इविल स्माइल देने लगा। उसने कहा, और हमारी इच्छा थी कि हम जान पाते कि रिपोर्ट आपके लोगों के हाथ कैसे लगी, लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ है। मैं आज रात ही इसे वापस ले लूंगा। वह क्या है, दरवाजे पर कौन है?
स्टूडेंट्स, अब दरवाजे पर खटखटाने की आवाज सुनाई दे रही थी।
Fowler jumped at the sudden knocking at the door. Oswell just smiled. That will be the police, he said. I thought that such an important paper as the one we are waiting for should have a little extra protection. I told them to check on me to make sure everything was All right.
दरवाजे पर अचानक खटखटाने की आवाज से फॉलर उछल पड़ा। Oswell अभी भी बस मुस्कुरा रहा था। Oswell ने कहा, वो पुलिस होगी। मुझे लगा कि इतना इम्पोर्टेंट कागज जिसके लिए हम इंतजार कर रहे हैं उसके लिए एक्स्ट्रा सिक्योरिटी तो होनी ही चाहिए। मैंने पुलिस वालों को कह दिया था कि वो मेरे पास आकर देख ले कि सब ठीक ठाक भी है या नहीं।
मैक्स बिट हिज लिप नर्वसली। द नॉकिंग वॉज रिपीटेड।
मैक्स ने घबराकर अपना होंठ काटा। दरवाजे पर फिर से आवाज हुई। कोई दोबारा से दरवाजा खटखटा रहा था।
व्हाट विल यू डू नाउ मैक्स, Oswell asked. If I do not answer the door, they will enter anyway. The door is unlocked, and they will not hesitate to shoot.
Oswell ne pucha, Max, ab aap kya karoge? Agar maine jawab nahi diya, to wo kisi na kisi tarah andar to aa hi jayenge. दरवाजे पर ना कोई ताला लगा हुआ है ना ही कोई कुंडी, और जब वो अंदर आएंगे यानी जब पुलिस वाले अंदर आएंगे और वो देखेंगे कि तुमने हमें ऐसे बंदी बना रखा है तो वो गोली चलाने से हिचकिचाएंगे भी नहीं। अब तो तुम फंस चुके हो।
मैक्स फेस वॉज ब्लैक विद एंगर As he backed swiftly towards the window, he swung a leg over the sill. Send them away, he warned. I will wait on the balcony. Send them away or I will shoot and take my chances.
Max ka chehra gusse se lal ho raha tha. Jaise hi मैं जल्दी से खिड़की की ओर वापस गया, उसने रात के अंधेरे में अपनी टांग बाहर निकाली और चेतावनी दी कि उन्हें वापस भेजो, मैं बालकनी में इंतजार करूंगा। उन्हें भेज दो नहीं तो मैं गोली चला दूंगा।
और जोखिम उठा देख लूंगा। यानी अगर ऑसबेल ने पुलिस वालों को वापस नहीं भेजा तो वो ऑसबेल को गोली मार देगा और उसके साथ जो होगा वो बाद में देखेगा। यानी मैक्स अब बिल्कुल भी नहीं डर रहा है। चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। आपका होमवर्क है कि यहाँ तक आपको स्टोरी को पढ़कर आना है। आगे की स्टोरी को हम नेक्स्ट लेसन में कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।